एड एच एच एस अध्याय दो वी 1.1। पहले अध्याय में मैंने खुद को समझने की कोशिश की। मेरे जीवन का रास्ता एक जंगली इद्सोडिस्तान जैसा लगा, विरोधाभासों और टूटनों से भरी एक दुनिया जिसे मैं अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों से व्यवस्थित करने की कोशिश करता था। अध्याय के अंत में एक बार ग्राफ ने मेरी प्राथमिकताएं दिखाई। मेरे लिए परिवार और दोस्त सबसे ऊपर है, उसके बाद चीजों को विकसित करने की इच्छा, लक्ष्य हासिल करने की चाह और बोरियत से बचने की प्रवृत्ति आती है। यह मेरे जीवन की सांख्यिकी, अगले कदम की ओर दृष्टि खोलती है। अब बात केवल बाहरी लक्ष्यों की नहीं है, बल्कि मेरे सोचने की संरचनाओं की है, उस तरीके की जिसमें ध्यान, अतिस्क्रियता, संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता मेरे भीतर मिलकर काम करते हैं। ठीक इसी संबंध को मैं आगे वर्णित करना चाहता हूँ। प्रारंभिक उच्च प्रतिभा और न्यूरोडाइवर्सिटी, कई लोग उच्च प्रतिभाशाली बच्चों की कल्पना छोटे चमत्कारी प्राणियों के रूप में करते हैं जो सब कुछ तुरंत समझ लेते हैं और हर जगह चमकते हैं। मेरे मामले में यह सच था। मैंने दूसरी कक्षा छोड़ दी पर सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ में शामिल था। उच्च प्रतिभाशाली बच्चों के परीक्षणों में मैं रचनात्मकता, एकाग्रता, स्मृति और संख्याओं की श्रृंखला के क्षेत्रों में भी उच्च प्रतिभाशालियों में औसत से ऊपर था। गणित और प्राचीन ग्रीक मेरे मुख्य विषय थे जिनमें मैंने हमेशा अच्छे अंक पाए और अबीट्यूर में मुझे लैटिन, ग्रीक, रसायन और जर्मन में पुरस्कार मिले। इन तथ्यों के बारे में बात करना मेरे लिए कठिन है क्योंकि उच्च बुद्धिमत्ता अक्सर अस्वीकृति, ईर्ष्या या द्वेष को उकसाती है। मेरे लिए यह बताना जरूरी है कि आईक्यू किसी व्यक्ति के मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहता। मेरी न्यूरोडाइवर्सिटी दो हिस्सों से बनी है, अत्यधिक प्रतिभा और ADHD। मैं उत्तेजनाओं को तेज, अधिक जुड़ा हुआ, आवेगपूर्ण और तीव्रता से संसाधित करता हूँ। यह मिश्रण मेरी धारणा, दुनिया की संरचना और मेरी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। मुझे आंतरिक रूप से शांत होने के लिए अत्यधिक बौद्धिक इनपुट की आवश्यकता होती है। यदि यह नहीं मिलता तो आंतरिक तनाव पैदा होता है, जैसे मेरा सिर एक साथ कई आवृत्तियों पर प्रसारित हो रहा हो। मेरे लिए तार्किक संगति केंद्रीय है। जैसे ही कुछ मेल नहीं खाता मुझे उसे स्पष्ट करना होता है, भले ही अन्य लोग इसे बाल की खाल निकालना माने। बिना अर्थ की परंपराओं पर मैं इसलिए सवाल नहीं उठाता कि मैं उकसाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरी सोच पैटर्न खोजती है। साथ ही मैं अति संवेदनशील हूँ। आवाजें तेज लगती हैं, रंग अधिक तीव्र, भावनाएं गहरी, और ADHD इस संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है। उत्तेजना की अधिकता मेरे लिए कोई सैद्धांतिक खतरा नहीं बल्कि रोजमर्रा की चुनौती है। ये गुण मेरी सोच को एक आतिशबाजी जैसा बना देते हैं। एक चिंगारी काफी है और मैं वे संबंध देख लेता हूँ जो दूसरों से छिपे रहते हैं। गणित के सवाल या जटिल समस्याएं मुझे जैसे लपक लेती हैं, परिणाम मेरे दिमाग में तहले से होता है, इससे पहले कि मैं हल करने का तरीका सचेत रूप से सोचूं। ADHD इन अचानक आने वाले विचारों को और बढ़ा देता है। इन्हें न तो योजना बना सकते हैं न ही काबू कर सकते हैं, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक आ जाते हैं। अक्सर विचार मेरे मन की आंखों के सामने तैयार चित्रों के रूप में आते हैं, ग्राफिक संरचनाएं, अवधारणाएं, यूजर इंटरफेस। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग पृष्ठभूमि में लगातार गणना कर रहा हो और फिर परिणाम मेरे सामने रख देता हो। ऐसे विचार उपहार भी है और हमला भी। ये नेटवर्क जैसी सोच आकर्षक भी है और थकाऊ भी। एक विचार अगले को खींच लाता है, हर विचार नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। ADHD के साथ यह न केवल प्रेरणादायक है बल्कि थका देने वाला भी, क्योंकि मन शायद ही कभी शांत होता है और मैं उन विवरणों में उलझ जाता हूँ जो दूसरों को दिखते भी नहीं। एक छोटी सी तार्किक कमी मेरे भीतर तीव्र असुविधा पैदा करती है। मेरा पूर्णतावाद का आग्रह मुझे कभी कभी आगे बढ़ाने के बजाय जकड़ लेता है। यह सबसे तीव्र तब होता है जब कोई नया विचार केवल विचार के रूप में नहीं बल्कि पूरे चित्र के रूप में चमकता है, रंगों और आकारों के साथ। ये चित्र अक्सर मामूली परिस्थितियों में प्रकट होते हैं, टहलते समय, बच्चों के साथ खेलते समय या रात में जब मेरा ADHD मेरा दिमाग लगातार सक्रिय रखता है। ऐसे चित्र आने से पहले दिमाग में अनगिनत टुकड़े घूमते रहते हैं, एक थकाऊ लेकिन आनंददायक अराजकता। मेरी उच्च बुद्धिमत्ता केवल दिमाग तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे शरीर में व्याप्त है। मैं तनाव, एलर्जी और अन्य प्रभावों पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता हूँ। मेरा शरीर अक्सर एक तरह की स्थायी तनावावस्था में रहता है, जैसे वह हमेशा सतर्क हो। जबरन लिए गए विराम भी मेरे लिए आरामदायक नहीं होते अगर मुझे मानसिक चुनौती नहीं मिलती। इसी कारण मैं उच्च गुणवत्ता वाली, कम उत्तेजना वाली चीजों की ओर आकर्षित होता हूँ। सरल स्वाद का मतलब मेरे लिए है कुछ उत्कृष्ट उपकरण, स्पष्ट पाठ और साफ सुथरे मॉडल चुनना। गुणवत्ता मेरे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, औसतपन शोर पैदा करता है रूढ़ियों के बजाय। व्यक्तित्व, हालांकि मैं यहाँ खुद को खुलकर वर्णित कर रहा हूँ, मैं यह बताना चाहता हूँ कि उच्च और अत्यधिक प्रतिभाशाली लोगों के पैटर्न बहुत अलग होते हैं। सभी मेरी तरह उत्तेजनाओं को संसाधित नहीं करते। कुछ अपनी प्रतिभा को विश्लेषणात्मक, कुछ कलात्मक, शारीरिक या सामाजिक रूप में अनुभव करते हैं। मेरा ADHD मेरी व्यक्तिगतता को और बढ़ाता है, क्योंकि यह मुझे मजबूर करता है कि मैं विविध उत्तेजनाओं से निपटने के लिए अपने रास्ते खोजूं, जो एक के लिए समृद्धिदायक है वह दूसरे के लिए पंगु बना सकता है। इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि हर कोई अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल विकसित कर सके बिना किसी मानक में ढाले जाने के। ये व्यक्तिगतता एक साथ वरदान और अभिशाप है। ये खुद को फिट करना कठिन बनाती है, लेकिन अपने रास्ते खोजने की आजादी भी देती है। परिवार और मूल्य मेरे अपने परिवार में विविधता, इन भिन्नताओं को मूर्त बना देती है। मेरे एक बच्चे में उच्च प्रतिभा है, दूसरा औसत है। दोनों दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, और मेरे अपने ADHD के कारण मुझे संतुलन बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मेरे लिए जरूरी है कि हम परिवार के रूप में मूल्य जिएं। हर कोई अलग है, हर किसी की अपनी ताकत है, कोई भी कम या ज्यादा मूल्यवान नहीं है। यह दृष्टिकोण हमें भिन्नताओं को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं बल्कि समृद्धि के रूप में देखने में मदद करता है, भले ही यह रोजमर्रा में हमेशा आसान नहीं होता। मुझे पता है कि ऐसी भी परिवार है जहां ये भिन्नताएं दरारों का कारण बनती हैं। जब किसी बच्चे को बहुत तेज या बहुत थकाऊ माना जाता है, चाहे वह उच्च बुद्धिमत्ता या ADHD के कारण हो, तो तनाव पैदा होता है। भाई बहन उपेक्षित महसूस करते हैं, माता पिता अभिभूत हो जाते हैं। मेरे आसपास हमेशा यह संतुलन साधना रहा है कि इन भिन्नताओं को छुपाया ना जाए बल्कि खुलकर चर्चा की जाए, ताकि ईर्ष्या, गलतफहमी या छोटे रिश्तों को न बिगाड़े। केवल इसी तरह हम यह रोक सकते हैं कि भिन्नता दीवारें खड़ी न कर दे। मैं यह रास्ता प्यार से चलता हूँ, भले ही यह थकाऊ हो। सामाजिक संपर्क की चुनौती, मेरी नेटवर्क जैसी सोच दूसरों के लिए अक्सर चुनौती होती है। मुझे महसूस होता है कि मेरी बोलने की गति सामने वाले के लिए असहज रूप से तेज है। मैं बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी और संबंध निकाल देता हूँ। मेरे लिए यह तर्कसंगत है, दूसरों के लिए यह अराजक और भारी हो सकता है। एक छोटी सी तार्किक कमी मुझ में तुरंत दबाव पैदा करती है उसे हल करने का, जिससे मैं आवेगपूर्ण व्यवहार करता हूँ। यही आवेगशीलता उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से मेरे साथ बातचीत कभी कभी विचारों की छलांग जैसी लगती है। मुझे पता है कि मेरी सोचने की शैली दूसरों के लिए डरावनी हो सकती है। जब मैं किसी तार्किक कमी की ओर इशारा करता हूँ या आदतों पर सवाल उठाता हूँ, तो लोग अपनी सुरक्षा में खतरा महसूस करते हैं। यह अक्सर आवेग में होता है, क्योंकि मैं आंतरिक रूप से असंगतता को सहन नहीं कर सकता। रिश्तों में इससे टकराव और गलतफहमियां हुई हैं, कुछ लोग दूर हो गए। यह दुखद है जब दूसरे मेरी ताकत को संसाधन के रूप में नहीं बल्कि खतरे के रूप में देखते हैं और चुपचाप खुश होते हैं जब मुझे कुछ नहीं मिलता। ईर्ष्या एक मानवीय भावना है, लगभग एक विकासवादी सुरक्षा कार्यक्रम। अपनी अति संवेदनशीलता के कारण मैं ऐसी तरंगों को तुरंत महसूस कर लेता हूँ। मुझे दूसरों से ऊपर उठने की इच्छा नहीं है। मेरा प्रेरक तत्व जिज्ञासा और अर्थ की तलाश है, श्रेष्ठता नहीं। ये अनुभव लगातार प्रामाणिकता और अनुकूलन के बीच संतुलन साधने की ओर ले जाते हैं। या तो मैं खुद को ढालता हूँ, कम बोलता हूँ और अपनी सोच की जटिलता को छांटता हूँ, तब मैं सामाजिक रूप से स्वीकार्य हूँ लेकिन आंतरिक रूप से अधूरा महसूस करता हूँ। या मैं जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ, सीधा, आलोचनात्मक, कभी कभी असुविधाजनक, और जोखिम उठाता हूँ कि लोग दूर हो जाएं। मुझे हमेशा तौलना पड़ता है कि कोई टिप्पणी मददगार है या आक्रमण के रूप में ली जाएगी। यह रोजमर्रा की जद्दोजहद मेरे सबसे बड़े आंतरिक संघर्षों में से एक है। सामाजिक वर्जनाएं और बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार, जर्मनी में हम बुद्धिमत्ता के विषय को लेकर खास तौर पर सतर्क रहते हैं। लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं जब बात उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं की आती है, पर एलीट शब्द तुरंत नकारात्मक अर्थ ले लेता है। इसके ऐतिहासिक कारण है, नाजी काल में बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का दुरुपयोग हुआ लोगों को अलग थलग करने और नष्ट करने के लिए। घमंड के डर से इस विषय को अक्सर वर्जित कर दिया जाता है, बजाय इसके कि उस पर भेदभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जाए। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो असंगतियों को तुरंत देखता है और उन्हें छोड़ना मुश्किल पाता है, यह तनाव सहना कठिन है। मैं चाहता हूं कि हम भिन्नताओं के बारे में खुलकर बात कर सकें बिना तुरंत मूल्यांकन किए। मुझे विश्वास है कि समाज को लाभ होगा अगर मेरे जैसे लोगों को लगातार नहीं रोका जाए। मेरी अति बुद्धिमत्ता मुझे जल्दी से नए समाधान देखने देती है, जबकि मेरा ADHD मुझे जिज्ञासु और अपरंपरागत सोचने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अक्सर इसे बहुत तेज, बहुत आलोचनात्मक, बहुत अधिक के रूप में देखा जाता है। खासकर तब दुख होता है जब दूसरे मेरी गलतियों पर खुश होते हैं या मेरी उपलब्धियों को छोटा करते हैं। मेरी नज़र में यह फायदेमंद होगा अगर हम इन क्षमताओं को एक अवसर के रूप में देख सकें। पेशेवर रास्ते और बेचैनी। कई अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग पेशेवर रूप से स्वतंत्र होते हैं। मैंने भी जल्दी महसूस किया कि एक ही पेशा मुझे लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रखेगा। मेरी अति बुद्धिमत्ता लगातार नई चुनौतियां खोजती है और मेरा ADHD विविधता की मांग करता है। इसलिए मैंने कई गतिविधियां एक साथ विकसित की, परियोजनाएं शुरू की, कंपनियां बनाई और हमेशा नई नई योजनाएं बनाई। कुछ लोगों को यह बेचैन महत्वाकांक्षा जैसा लगता है, लेकिन सच में यह एक आंतरिक आवश्यकता है, लगातार आगे बढ़ने और अपनी ऊर्जा ऐसी चीजों में लगाने की जो मुझे सच में चुनौती दे। बौद्धिक रूप से समृद्ध वातावरण में मैं खिल उठता हूँ, वहाँ जहाँ रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच और लगातार सवाल करना बाधा नहीं बल्कि समृद्धि माने जाते हैं। पारंपरिक कंपनियों में मुझे जल्दी महसूस होता है कि अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है। मेरी सोच अपरंपरागत है, मेरे विचार सामान्य सीमाओं को पार कर जाते हैं और ADHD के कारण मैं उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सामने रख देता हूँ। मेरे लिए यह स्वाभाविक है, दूसरों के लिए थकाऊ या डरावना। मुझे हमेशा पूछना पड़ता है, क्या मेरी आपत्ति मददगार है या आक्रमण जैसी लगती है। यह संतुलन मुझे यह एहसास कराता है कि मेरी सोच की शैली मूल्यवान हो सकती है, लेकिन टीम में बने रहने के लिए संवेदनशील ना जरूरी है। हर अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं होता। मैंने खुद कभी लंबे समय तक दूसरों का नेतृत्व करने की इच्छा नहीं की। नेतृत्व का मतलब है कम विषय वस्तु पर काम करना और दूसरों की जिम्मेदारी लेना। मेरी अति बुद्धिमत्ता मुझे विषय की गहराई, विश्लेषण और रचना की ओर खींचती है। ADHD के साथ मुझे प्रबंधन कार्यों पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना कठिन लगता है। मेरा दिमाग बहुत जल्दी कूदता है, निर्णय लेना मुश्किल होता है क्योंकि मैं लगातार नई संभावनाएं देखता हूँ। साथ ही मुझे पता है कि नेतृत्व दृष्टि को लागू करने का मौका देता है, लेकिन दूसरों के लिए बहुत जिम्मेदारी भी लाता है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह खास चुनौती है। पेशेवर असफलता अत्यधिक प्रतिभाशालियों में असामान्य नहीं है। कुछ शीर्ष पदों तक पहुँचते हैं या सफल कंपनियां बनाते हैं, जबकि अन्य उत्तेजना की अधिकता या आंतरिक बेचैनी से टूट जाते हैं। मैं दोनों पक्ष जानता हूँ। ऐसे दौर जब मेरा ADHD मुझे इतना सक्रिय कर देता है कि मैं मुश्किल से सोता हूँ और गति यातना बन जाती है, एक आंतरिक जलन जो सिर में नरक जैसी लगती है, तब मुझे पीछे हटना पड़ता है खुद को फिर से पाने के लिए। पढ़ना, सोचना, रचनात्मक होना, ये आगे बढ़ने और पीछे हटने के बीच का झूलना मेरे जीवन का हिस्सा है। बाहरी लोगों को ये बेचैन प्रदर्शन की तरह लगता है, लेकिन मेरे लिए ये शांति पाने का तरीका है। मेरा दिमाग लगातार विचार पैदा करता है, जब तक मैं उन्हें ठोस रूप नहीं देता कुछ भी शांत नहीं होता। ADHD यह सुनिश्चित करता है कि ये प्रवाह कभी न रुके। इसलिए मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें कई पहलू शामिल हैं। एकरसता मुझे घुटन देती है। कोपिंग रणनीतियां और सीखने के क्षेत्र, अधूरी और अधिकता के बीच के अंतर को संतुलित करने के लिए मैंने अपनी रणनीतियां बनाई हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं अंग्रेजी सीखता था, जर्मन, लैटिन और प्राचीन ग्रीक के अलावा एकमात्र भाषा जिसमें मेरी रुचि थी, तो मैं जो कुछ भी सुनता उसे दिमाग में तुरंत अनुवाद करता। इससे मैंने जटिलता बढ़ाई, विषय पर बना रहा और अपने विचारों को भटकने से रोका। व्याख्यान या चैट ऑडियो में अक्सर दोगुनी गति से सुनता हूँ, तब मेरा दिमाग सुखद रूप से व्यस्त रहता है और मेरा ADHD मुझे प्रवाह में होने का एहसास देता है। अपने खाली समय में मैं जानबूझकर ऐसी गतिविधियां खोजता हूँ जो मुझे मानसिक रूप से चुनौती दे। प्रोग्रामिंग, विशेषज्ञ साहित्य, अन्य नर्ड्स के साथ संवाद और अब तो AI विकास भी, ये एक तरह की आत्म देखभाल है, एक वेंटिल जिससे स्थायी आंतरिक बेचैनी को रचनात्मक दिशा मिलती है। मेरे लिए सीखने का अवसर महत्वपूर्ण है, न कि केवल अधिक सामग्री मिलना। मुझे ऐसी चुनौतियां चाहिए जो जटिल हों और मेरे वर्तमान स्तर से थोड़ी ऊपर हों। अगर कार्य बहुत आसान है तो मुझे न केवल बोरियत होती है बल्कि वास्तविक तनाव भी होता है, कभी कभी शारीरिक लक्षण भी। मेरे ADHD के कारण मैं इस दबाव को और तीव्रता से महसूस करता हूँ। मेरी ऊर्जा व्यर्थ जाती है और मेरे ही खिलाफ हो जाती है। मात्रात्मकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अपनी रणनीतियां विकसित करना कि मैं अधिकता से कैसे निपटता हूँ। ठीक यही क्षमताएं, निराशा सहन करना, गलतियों को झेलना, आवेगों को रोकना, मैं स्कूल और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का हिस्सा चाहता था। बेचैन सृजनशीलता और पीछे हटना मेरी बेचैन सृजनशीलता की अपनी छायाएं भी है। मैं अक्सर रात में जागता रहता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग कोई नया विषय तब तक चबाता रहता है जब तक उसकी हर शाखा स्पष्ट न हो जाए। किताबें, नोट्स और ढीले पन्ने जमा हो जाते हैं। जब मेरा ADHD और मेरी अति बुद्धिमत्ता सिर से कोई नई शोध यात्रा शुरू कर देती है, तब मैं जैसे रिमोट से नियंत्रित होता हूँ। विचार बिना रुके आते हैं और जब तक आंतरिक पहेली पूरी नहीं होती, दबाव नहीं खटता। यह लगातार प्रेरक उत्तेजना और थकावट के बीच संतुलन साधना है, जो अनिवार्य रूप से आती है जब मैं इस प्रवाह से खुद को अलग नहीं कर पाता। ऐसा होते हुए भी समाज के लिए यह लाभकारी होगा अगर हमें लगातार ब्रेक पर नहीं रहना पड़े। बहुत संभावनाएं अनछुई रह जाती है, क्योंकि मेरे जैसे लोग खुद को ढालते हैं, छुपाते हैं या जानबूझकर गलतियां करते हैं ताकि बहुत बुद्धिमान या बहुत अलग न दिखें। मुझे वे दौर याद है जब मैंने अपनी क्षमताओं को छोटा करके दिखाया ताकि टकराव न हो। इस व्यवहार ने मेरी असुरक्षा और आत्मसंदेह को और बढ़ा दिया। क्या वे मुझे पसंद करते हैं या केवल उस भूमिका को जो मैं निभाता हूँ? जैसे सवालों का जवाब देना मुश्किल है, यह अनुकूलन और खुद को खुलकर दिखाने की चाह के बीच झूलना मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मैंने अपना रास्ता इस तरह पाया कि मैंने एक विस्तृत क्षेत्र चुना, सांख्यिकी। वहां मैं गहराई में जा सकता हूँ और साथ ही बार बार नए क्षेत्र खोज सकता हूँ। मैंने अकादमिक काम किया, संगठनों को सलाह दी, किताबें लिखी, सेमिनार विकसित किए, परियोजनाएं शुरू की और कंपनियां स्थापित की। दूसरों को यह शायद लगातार प्रदर्शन की तरह लगे, मेरे लिए यह अपने दिमाग की स्थायी सक्रियता से निपटने का तरीका है। मेरा ADHD लगातार नए विचार देता है, मेरी अति बुद्धिमत्ता लगातार योजनाएं, और मैं उन्हें अलग अलग दिशाओं में मोड़ता हूँ। यह मिश्रण मुझे जीवंत रखता है और एक तरह की शांति देता है, क्योंकि आंतरिक प्रवाह व्यर्थ नहीं जाता बल्कि आकार लेता है। एब्सर्डिस्तान में संतुलन मेरी न्यूरोडाइवर्सिटी की मिश्रण, अत्यधिक प्रतिधा और ADHD एक साथ इंजन भी है और ब्रेक भी। यह मुझे सेकंड के अंश में पैटर्न पहचानने, अप्रत्याशित समाधान खोजने और जटिल मॉडल सहजता से समझने देती है। यह मुझे संवेदनशील, आवेगशील और उत्तेजना की अधिकता के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। यह ऊंचाइयों और गिरावटों का कारण बनती है, असीम रचनात्मकता के दौर और पीड़ादायक बेचैनी के समय लाती है। यह मुझे लगातार संतुलन साधने के लिए मजबूर करती है, प्रामाणिकता और अनुकूलन के बीच, प्रेरणा और अधिकता के बीच, नेतृत्व और गहरे काम के बीच। इस अध्याय की यात्रा मेरे आंतरिक एब्सर्डिस्तान को नक्शे पर उतारने का प्रयास थी, शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए कि न्यूरोडाइवर्सिटी वाली प्रतिभाएं कितनी समृद्धिदायक और चुनौतीपूर्ण होती है। मैं ऐसी समाज की कामना करता हूं जो इस विविधता से डरे नहीं बल्कि उसे अवसर के रूप में देखे। एक ऐसी समाज जिसमें मेरे जैसे लोगों को खुद को छोटा छुपाना या अपनी क्षमताएं छुपानी न पड़े, क्योंकि जंगली एब्सर्डिस्तान केवल मेरी व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, ये उस दुनिया की तस्वीर है जिसमें हम सभी रहते हैं, विरोधाभासों से भरी, संभावनाओं से भरी, अवसरों से भरी। अगर हम इससे डरने के बजाय इसके साथ खेलना और रचना सीख लें, तो हमारे दिमागों की अराजक आतिशबाजी एक ऐसी रोशनी बन सकती है जो दूसरों को भी प्रेरित करे।